أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله، الصلاة والسلام على أهلها، ولعنة الله على أهلها. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام برادران و خواہران کو دعا و مناجات کے اس نشست پہ خوش آمدید. صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا ہم نے شروع کیا، اور الحمدللہ صحیفہ میں سے تین دعائیں ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں. آج جس دعا کا انتخاب کیا ہے، آج بھی دو دعائیں ہیں، یہ دعا نمبر 5 اور 6 ہے. پانچویں دعا امام علیہ السلام نے اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے آپ کی دعا ہے، حضرت کی دعا ہے. اور اسی طرح چھٹی جو دعا ہے وہ صبح و شام کی دعا ہے، یعنی صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات کے لیے امام کی دعا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے جو امام کی دعا ہے اس سے آغاز کرتے ہیں. بنام خدائے رحمان و رحیم. اے وہ جس کی بزرگی و عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمیں اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر کج اندیشوں سے بچا لے. اے وہ جس کی شاہی و فرما روائی کی مدت ختم ہونے والی نہیں، تو رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر، اور ہماری گردنوں کو اپنے غضب و عذاب کے بندنوں سے آزاد رکھ. اے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل علیہ السلام پر، اور اپنی رحمت میں ہمارا بھی حصہ قرار دے. اے وہ جس کے مشاہدے سے آنکھیں قاصر ہیں، لا یدرکہ الابصار، جیسے کہ قرآن کی بھی آیت ہے کہ نگاہیں اسے درک نہیں کر سکتی، یعنی اے وہ جس کے مشاہدے سے آنکھیں قاصر ہیں، یہاں بھی اسی طرح کا جملہ کہا. ایک چیز جو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں آپ کو نظر آئے گی، جیسے کہ کل ایک چیز کا عرض کیا تھا، ایک تو کل عرض کیا تھا کہ آپ کو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں آیات قرآنی کا استعمال نظر آئے گا، اور زیادہ تر باتیں خود قرآن نے جس طرح کے موضوعات اور مفاہیم کو بیان کیا ہے، ان دعاؤں کے اندر بھی اسی طرح کے موضوعات ہیں. آپ میں سے وہ دوست، وہ خواہران ہماری کہ جو درس قرآن میں شامل ہے ہمارے ساتھ، رات جو درس ہوتا ہے، وہ اچھی طرح اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جس طرح کے مطالب، جس طرح کا موضوع، جس طرح کا لب و لہجہ قرآن مجید کا ہے، ان دعاؤں کے اندر ہم اسی طرح کا لب و لہجہ دیکھیں گے، یعنی قرآن کے موافق ہیں یہ، اور حدیث اور روایت کے صحیح اور مستند ہونے کی جو شرط ہے معصومین کی احادیث کے مطابق، وہ شرط اسی پر ہے کہ وہ قرآن کے موافق ہوں. ایک چیز یہ تھی. دوسری چیز جو آپ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں آپ نوٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود ہے. کثرت سے دعاؤں کے اندر درود امام نے پڑھی ہے. تو درود، ایک صلوات جو ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ خود دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی دعاؤں کے اندر درود کو شامل کریں، یہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت زیادہ معاون و مددگار ہے. بس اس دعا میں بھی آپ دیکھیں گے قدم قدم پہ امام محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اے وہ جس کے مشاہدے سے آنکھیں قاصر ہیں، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کر لے. اے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست و حقیر ہیں، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور ہمیں اپنے ہاں عزت عطا کر۔ اے وہ جس کے سامنے رازہائے سربستہ ظاہر ہیں، یعنی تیرے سامنے خدا کوئی راز نہیں ہے، تو سب چیزوں کا جاننے والا ہے، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ بار الہ ہمیں اپنی بخشش و عطا کی بدولت بخشش کرنے والوں کی بخشش سے بے نیاز کر دے، یعنی خدا تو اپنی طرف سے ایسی بخشش ہمیں عطا فرما اور تیری عطائیں ایسی ہو کہ ان عطاؤں اور اس بخشش کے بعد ہمیں انسانوں میں سے کسی کی عطا اور بخشش کی ضرورت باقی نہ رہے، اور اپنی پیوستگی کے ذریعے قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلقی اور دوری کی تلافی کر دے، تاکہ تیری بخشش و عطا کے ہوتے ہوئے دوسرے سے سوال نہ کرے، خدایا اگر کوئی قطع تعلق بھی کرے ایسا کہ جس سے انسان لوگ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اپنے معاملات کے بارے میں، تو خدا میرا تیرے ساتھ ایسا تعلق مضبوط ہو کہ مجھے اس طرح کے لوگوں کے قطع تعلق کرنے سے کوئی، یعنی کوئی فرق نہ پڑے، ایسی کوئی مشکل نہ بنے۔ تیرے فضل و احسان کے ہوتے ہوئے کسی سے ہراساں نہ ہوں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت فرما، اور ہمارے نفع کی تدبیر کر، ہمارے نقصان کی تدبیر نہ کر، اور ہم سے مکر کرنے والے دشمنوں کو اپنے مکر کا نشانہ بنا، اور ہمیں اس کی زد پر نہ رکھ، اور ہمیں دشمنوں پر غلبہ دے، دشمنوں کو ہم پر غلبہ نہ دے۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھ، اپنے فضل و کرم سے ہماری نگہداشت فرما، اور اپنی جانب ہمیں ہدایت کر، اور اپنی رحمت سے دور نہ کر، جسے تو اپنی ناراضگی سے بچائے گا وہیں بچے گا، اور جسے تو ہدایت کرے گا وہیں حقائق پر مطلع ہوگا، اور جسے تو اپنی رحمت سے قریب کرے گا وہیں فائدے میں رہے گا۔ اے معبود، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں زمانے کے حوادث کی سختی اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی فتنہ انگیزی اور سلطان کے جابر سلطان کے قہر و غلبے کی تلخ کلامی سے اپنی پناہ میں رکھ۔ تین چیزوں سے پناہ مانگے، زمانے کے حوادث کی سختی سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کی فتنہ انگیزی سے، اور سلطان کے قہر و غلبے سے، یعنی جو جابر و ظالم سلطان ہو، حاکم ہو، اس کے قہر اور غلبے سے امام نے اللہ کی پناہ مانگی۔ بار الہ بے نیاز ہونے والے تیرے ہی کمال قوت و اقتدار کے سہارے بے نیاز ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی جو بھی بے نیاز ہو وہ بے نیاز تیرے ہی کمال قوت و اقتدار کے سہارے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یعنی اگر انسان غنی ہونا چاہے، یعنی یہ ایک رستہ ہے، غنی ہونا چاہے، بے نیاز ہونا چاہے، کسی پر ڈیپینڈ نہ ہونا چاہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سادہ سادہ، یعنی اللہ کی قوت سے خدا کے اقتدار کا سہارا لینا، خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ کرنا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، وہی بے نیاز ہوتا ہے، غنی ہو جاتا ہے۔ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر، اور ہمیں بے نیاز کر دے، اور عطا کرنے والے تیری ہی عطا و بخشش کے حصے وافر میں سے عطا کرتے ہیں، یعنی خدا اگر انسانوں میں سے کوئی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ اس چیز میں سے دیتا ہے جو تو نے اسے عطا کی ہوتی ہے، جو تیری طرف سے عطا ہو چکی ہوتی ہے، اسی سے وہ کسی اور کو دیتا ہے۔ بس رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر، ہمیں بھی اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرما، اور ہدایت پانے والے تیری ہی ذات کی درخشندگیوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर, और हमें हिदायत फरमा, यानी खुदा राह हिदायत की तरफ आने के लिए भी यकीनन तेरी ही जात की तरफ, यानी खुद जिसके लिए जिसको तेरी जात की मारिफत हासिल हो जाती है, जो तेरी जात पर ईमान और एकान यकीन हासिल करता है वही राह हिदायत की तरफ आता है। बस तू रसूलुल्लाह और उनकी आल पर रहमत फरमा और हमें भी राह हिदायत की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा। बारिलाहा जिसकी तूने मदद की उसे मदद न करने वालों का मदद से महरूम रखना कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। खुदा अगर तू किसी की मदद करे और उसकी मदद दोस्त अहबाब रिश्तेदार जानने वाले दोस्त हो कोई भी, उनकी मदद से महरूम करना, जैसे होता है बाज़ औक़ात दोस्तों में नाराजगियां नाचाकी आ जाती है, फिर अपने एक दूसरे को अपनी मदद से महरूम रखते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इमाम क्या फरमा रहे देखें कि परवरदिगारा जिसकी तूने मदद की उसे मदद न करने वालों का मदद से महरूम रखना कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदा सारी दुनिया ना करे मदद, लेकिन अगर तूने मदद की तो बाकी लोगों का मदद न करना, उनका महरूम रखना, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जिसे तू अता करे उसके यहाँ रोकने वालों के रोकने से कुछ कमी नहीं होती। खुदा है जिसको तू अता कर दे, तो ये जो दुनिया के मुख्तसर सी और महदूद सी दौलत या महदूद से वसाइल रखने वाले लोगों का अताओं को रोकना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तू अपनी अताएं करे, तू अता करे तो उसके यहाँ रोकने वालों के रोकने से कुछ कमी नहीं होती, उसे कुछ कमी नहीं होगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। और जिसकी तू खुसूसी हिदायत करे उसे गुमराह करने वालों का गुमराह करना बेराह नहीं कर सकता, उसको सिरात मुस्तकीम से हटा नहीं सकता कि जिसकी तू हिदायत करे। रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर, और अपने गलबे और कुव्वत के जरिए बंदों के शर से हमें बचाए रख, अपनी अता और बख्शिश के जरिए दूसरों से बेनियाज कर दे, और अपनी रहनुमाई से हमें राह हक पर चला। ए माबूद तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और हमारे दिलों की सलामती अपनी अजमत के याद में करार दे। यानी खुदा अगर हम अपने दिलों को सालिम रखना चाहें, यानी कल्ब सलीम को हासिल करने का तरीका क्या है, उसको याद खुदा से मामूर कर दे। और कुरान की आयत है जो खुदा के पास कल्ब सलीम लेकर आएगा उसी को नजात मिलने वाली है। और इस जगह आपको इमाम अलैहिस्सलाम कल्ब सलीम हासिल करने का जरिया बता रहे हैं। देखें हमारे दिलों की सलामती, कल्ब सलीम सलामत दिल, उसके लिए क्या करना होगा, अपनी अजमत की याद में करार दे, खुदा की अजमत की याद रखना। जाहिर है कि जिसके दिल में याद खुदा हो, जो खुदा की अजमत की याद रखता हो, तो वो कभी भी मासियत और नाफरमानी की तरफ कसदन नहीं जाएगा। और हमारी जिस्मानी फरागत के लम्हों को अपनी नेमत के शुक्रिये में सर्फ कर दे, यानी जब हम फरागत में हों तो हम तेरे शुक्र गुजार बंदे हों। और नेमत का शुक्र पहले भी अर्ज किया है, नेमत का शुक्र क्या है, अल्लाह की किसी भी नेमत का शुक्र ये है कि वो नेमत अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दी है उसको वहीं पर इस्तेमाल किया जाए, नेमत को उस मकसद उसके जिस मकसद के लिए अता की गई हो उस मकसद के लिए इस्तेमाल करना, यही नेमत का शुक्र है। और हमारी जुबानों की गोयाई को अपनी एहसान की तौसीफ के लिए वक्फ कर दें। खुदाया तेरा जो हम पर एहसान है हम उसको बयान करें, तेरी तौसीफ करें, तेरी तारीफ करें, हमारी जुबानों को हमारी जुबानें यही काम अंजाम दें कि हम तेरी तारीफ कर रहे हों। ऐ अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, और हमें उन लोगों में से करार दे जो तेरी तरफ दावत देने वाले और तेरी तरफ का रास्ता बताने वाले हैं, और अपने खास उल खास मुकर्रबीन में से करार दे। ऐ सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले, या अरहमर राहिमीन। यहाँ पर ये दुआ नंबर 5 का इख्तिताम हुआ और दुआ नंबर 6 मैं शुरू कर रहा हूँ। इस दुआ को दुआए सुबह शाम कहते हैं, यानी इमाम अलैहिस्सलाम सुबह और शाम में ये दुआ किया करते थे। बहुत खूबसूरत है, इसके मतालिब इंशाल्लाह आप तवज्जो करेंगे। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपनी कुव्वत और तवानाई से शब और रोज को खल्क फरमाया और अपनी कुदरत की कार फरमाई से इन दोनों में इम्तियाज कायम किया और उनमें से हर एक को मुअय्यना हुदूद और मुकर्ररा औकात का पाबंद बनाया और उनके कम और बेश होने का जो अंदाजा मुकर्रर किया उसके मुताबिक रात के जगह पर दिन और दिन की जगह पर रात को लाता है ताकि इसके जरिए से बंदों की रोजी और उनकी परवरिश का सामान करे। चनाचा उसने उनकी उनके लिए रात बनाई ताकि वो उसमें थका देने वाले कामों और खस्ता कर देने वाली कोशिशों के बाद आराम करें और उसे पर्दा करार दिया ताकि सुकून की चादर तान कर आराम से सोएं और ये उनके लिए राहत और निशात और तबी कुवतों के बहाल होने और लज्जत और कैफ अंदोजी का जरिया हो। देखें रात को खुदा ने किस लिए खल्क किया है, यहाँ पर इमाम ने बयान किया क्यों रात बनाई, ताकि इसमें जो दिन भर के थका देने वाले काम थे, ऐसी मसरूफियतें कि जो इंसान को खस्ता कर दें, उनके बाद आराम करें और उसे पर्दा करार दिया है। यानी रात का रात पर्दा है और बिलखसूस जिनकी आदत है देर तक जागने की, रातों को जागने की और दिन में सोने की, तो वो उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ इमाम के इस कौल के मुताबिक कुरान ने भी इसी तरह रात को सुकून का जरिया, रात को नींद के लिए करार दिया है। बस अब देखिए सुकून करें आराम करें ताकि जो इंसान का जिस्म है उसकी जो कुव्वतें हैं वो दोबारा बहाल हो जाएं, तरोताजा हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, ताकि अगले दिन जो है वो उसको काम मिला सके अपने बदन को। और इसी तरह फिर ये रात लज्जत और कैफ हासिल करने का जरिया भी है, जो यकीनन एक तो नींद की लज्जत है और दूसरा अगर अज़दवाज हो, शादीशुदा हो, तो फिर जो हलाल लज्जत है उसके हुसूल का भी ये रात ही जरिया है। अब चनांचा अब रात हो गया, उसके बाद दिन के बारे में इमाम जो बयान कर रहे हैं, और दिन को उनके लिए रोशन और दरख्शां पैदा किया, दिन को रोशन पैदा किया, रात तारीख है आराम के लिए, दिन रोशन और दरख्शां पैदा किया ताकि इसमें कार और कसब में सरगर्म अमल होकर उसके फजल की जस्तजू करें, काम करें और अल्लाह का फजल तलाश करें और रोजी का वसीला ढूंढने कोशिश करें, रिज़्क़ रोजी के वसीले की तलाश करें और दुनियावी मुनाफे और उखरवी फवाइद के वसाइल तलाश करने के लिए उसकी जमीन में चले फिरें। देखिए दुनियावी फायदे की तलाश के लिए तो चलते फिरते हैं लोग दिन में, जाहिर कारोबार करेंगे, जॉब करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ एक और भी कहा कि दिन में भी तलाश करे, दौड़ धूप करे एक और काम के लिए भी, वो क्या है, दुनियावी मुनाफे और उखरवी फवाइद के लिए, उखरवी फवाइद के वसाइल तलाश करने के लिए उसकी जमीन में चले फिरे। बस दिन फकत इसलिए नहीं है कि इंसान फकत दुनिया की तलाश और दुनियावी वसाइल की फराहमी के लिए जद्दोजहद करे, बल्कि साथ ही साथ दिन में इंसान को अपने उखरवी फायदे के हुसूल के लिए भी कोशिश करनी होगी, करनी चाहिए। इन तमाम कार फरमाइयों से वो उनके हालात संवारता है और उनके आमाल की जांच करता है और ये देखता है कि लोग वो लोग इताअत की घड़ियों, फराइज की मंजिलों और तामील अहकाम के मौकों पर कैसे साबित होते हैं ताकि बुरों को उनकी बदामालियों की सजा और नेकोकारों को अच्छा बदला दे। यानी ये दिन रात का जो खिलकत वजह बता दी, उसके बाद क्या है, ये दिन और रात दोनों अब ये आजमाइश भी है ताकि लोग अमल करें, जो जो अमल कर सकते हैं, इंसान इरादे में आजाद है, अपने इरादे से अपने इख्तियार से नेकी का इंतखाब कर सकता है और बदी का इंतखाब अपने इरादे से इख्तियार से कर सकता है। लिहाजा ये इन मौकों पर फराइज जो खुदा ने इनको इनके जो फराइज मुकरर किए हैं उनकी बजावरी के मौके पर क्या इनकी रूटीन होती है, क्या इनकी रविश होती है, क्या इनका रवैया होता है, ये आजमाइश है ताकि बुरों को उनकी बदामालियों की सजा मिले और नेकोकारों को उनका अच्छा बदला मिले। ए अल्लाह तेरे ही लिए तमाम तारीफ और तौसीफ है कि तूने हमारे लिए रात का दामन चाक करके सुबह का उजाला किया और इस तरह दिन की रोशनी से हमें फायदा पहुंचाया और तलब रिज के मौके हमें दिखाए और उसमें आफात और बलियात से हमें बचाया। हम और हमारे अलावा सब चीजें जिन्हें तूने इनमें फैलाया है वो साकिन हो या मुतहर्रिक, मुकीम हो या चलने वाली, यानी मुकीम हो किसी जगह पे खड़ी हो, कायम हो या राहनवर्द हो या चलने वाली हो, फिजा में बुलंद हो या जमीन की तहों में पोशीदा, हम तेरे कब्जे कुदरत में है। खुदा यानी कायनात में जो कुछ है वो तेरे कब्जे कुदरत में है, चाहे हरकत करने वाले हो या गैर मुतहर्रिक हो, जिंदा हो या बेजान हो, जानदार हो जमादात हो, हैवान हो नबातात हो, जो हो सब तेरे कब्जे कुदरत में है और तेरा इक्तदार और तेरी बादशाहत हम पर हावी है और तेरी मशीयत का अहाता हमें घेरे हुए है। तेरे हुक्म से हम तसरुफ करते और तेरी तदबीर और कारसाजी के तहत हम एक हालत से दूसरी हालत की तरफ पलटते हैं। जो हुक्म तूने हमारे लिए नाफिज किया और जो खैर और भलाई तूने हमें बख्शी उसके अलावा हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। और ये दिन नया और ताजा वारिद है, यानी आज जो दिन का आगाज हो रहा है, इस वक्त जो मैं और आप सुबह का आगाज कर रहे हैं, इसी के बाद ये दिन नया और ताजा वारिद हुआ है जो हम पर ऐसा गवाह है जो हम वक्त हाजिर है। अगर हमने अच्छे काम किए तो वो तौसीफ और सना करते हुए हमें रुखसत करेगा, यानी ये दिन कि जो आज नसीब हुआ है, अगर इस दिन में हमने अच्छे काम किए तो ये दिन जब रुखसत होगा तो उस वक्त हमारी तारीफ करेगा, हमारी सिफत वस्फ बयान करते हुए रुखसत होगा। अगर हमने बुरे काम किए तो ये दिन बुराई करता हुआ हमसे अलहदा होगा, यानी दिन रोज ये भी गवाह है, गवाही देगा खुदा कि मैं दिन था और इसके आगाज में इसने ये नेकी की, इसने दरमियान में ये नेकी की, इसने ये अच्छा काम किया, इसने ये खूबी अंजाम दी। या अगर इंसान अगर अपने दिनों को अपनी बुराइयों के जरिए दिनों को अंदर अपने अमाल बुरे अमाल के जरिए पूर करेगा तो वो दिन बुराई बयान करता हुआ उससे अलहदा होता है। ए अल्लाह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा और हमें इस दिन की अच्छी रफाकत नसीब कर और किसी खता के इर्तिकाब करने या सगीरे व कबीरा गुनाह में मुब्तला होने की वजह से इसके ची व जबी होकर रुखसत होने से बचाए रख और इस दिन में हमारी नेकियों का हिस्सा ज्यादा कर और बुराइयों से हमारा दामन खाली कर और हमारे लिए इसके आगाज व अंजाम को हम्द व सिपास सवाब और जखीरे आखिरत और बख्शिश व एहसान से भर दे। यानी देखिए एक दिन का आगाज इस दुआ इन दुआओं के जुमले से आप अंदाजा लगा लें कि अपने दिन के आगाज में ही किस तरह की चीजें खुदा से तलब की जाए। खुदा ये जो दिन मैं आज गुजारू इसमें तेरी मासियत ना हो, मैं कोई कबीरा गुनाह अंजाम ना दू, मैं तेरे किसी हुक्म की हुक्म अदोली ना करूं, मैं तेरी नाफरमानी ना करूं, ऐसा ना हो कि ये दिन मुझ पर गुस्से की हालत में रुखसत हो, ये दिन मुझसे मेरी बुराई करता हुआ रुखसत हो कि ये कितना बुरा इंसान है, ये अपने रब का कितना बुरा बंदा है, ये कहकर मुझसे जुदा ना हो। ए अल्लाह किरामन कातबीन पर हमारा गुनाह कलम बंद करने की जहमत कम कर दे। खुदा ये जो फरिश्ते तूने अमाल लिखने के लिए मुकर्रर किए हैं इनमें से जो बुराइयां लिखने वाला फरिश्ते खुदा तो उसकी जहमत कम कर दे, हमारा नामा अमाल नेकियों से भर दे और बदामालियों की वजह से हमें उनके सामने रुसवा न कर। बार इलाहा तू इस दिन के लम्हों में से हर लम्हे और साहत में अपने खास बंदों का हज व नसीब और अपने शुक्र का एक हिस्सा और फरिश्तों में से एक सच्चा गवाह हमारे लिए करार दे। ऐ अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और आगे पीछे दाएं बाएं और तमाम अतराफ और जवानिब से हमारी हिफाजत कर। ऐसी हिफाजत जो हमारे लिए गुनाह हो मासियत से सरबरा हो, तेरी इताअत की तरफ रहनुमाई करे और तेरी मोहब्बत में सर्फ हो। ए अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा और हमें आज के दिन, आज की रात और जिंदगी के तमाम दिनों में तौफीक अता फरमा कि हम नेकियों पर अमल करें, बुराइयों को छोड़ें, नेमतों पर शुक्र और सुन्नतों पर अमल करें। देखिए, एक दिनों में इंसान को क्या करना चाहिए, एक बरनामे की तरह से दुआई शक्ल में इमाम बयान कर रहे हैं। नेमतों पर शुक्र और सुन्नतों पर अमल करें, बिदअतों से अलग थलग रहें, नेक कामों का हुक्म करें और बुरे कामों से रोकें, इस्लाम की हिमायत और तरफदारी करें, बातिल को कुचलें और उसे जलील करें, हक की नुसरत करें और उसे सरबलंद करें, गुमराहों की रहनुमाई, कमजोरों की इयानत और दर्दमंदों की चारेजुई करें। एक जामे प्लेन इमाम ने दिया है एक दिन के लिए। देखें, अपनी रोजी के लिए कोशिश करना एक मरहला, उस रोजी की कोशिश के साथ साथ ये सारे काम हैं, यानी खुद को पाकीजा रखना, खुद को आलूदा न करना, गुनाह से दूर रखना, इसी तरह नेकी की हिदायत करना, अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर करना, इसी तरह अपने काम को देखना कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा काम किसी ताबूत को, खुदा के मुकाबले किसी कुवत को तकलीफ देने वाला है। जाहिर है इन सब चीजों से निकलना होगा, बार इलाहा, और साथ साथ कमजोरों की मदद और दर्दमंदों की चारजुई, इन इंसानियत की खिदमत भी इस एक दिन के अंदर अपने दिन के एक हिस्से को, एक जगह को ऐसा रखना चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, कुमक करें। बार इलाहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और आज के दिन को उन तमाम दिनों से जो हमने गुजारे ज्यादा मुबारक दिन, और तमाम साथियों से जिनका हमने साथ दिया इस दिन को, आज को बेहतरीन दोस्त और उन तमाम वक्तों जिनसे, जिनके जेर साया हमने जिंदगी बसर की, इसको बेहतरीन वक्त करार दे और हमें उन तमाम मखलूकात में से ज्यादा राजी और खुशनूद रख जिन पर शब रोज के चक्कर चलते रहते हैं, और उन सबसे ज्यादा अपनी अता की हुई नेमतों का शुक्रगुजार, और उन सबसे ज्यादा अपने जारी किए हुए अहकाम का पाबंद, और उन सबसे ज्यादा उन चीजों से किनारा कशी वाला करार दे जिन जिद्दों ने खौफ दिलाकर मना किया है। आप देख रहे हैं ना किस कदर खूबसूरत अंदाज में दिन का आगाज कर रहे हैं इस दुआ को। यकीनन आज हम पढ़ रहे हैं, हम में से और आप में से यकीनन बहुत सारे लोग ज्यादा खुशकिस्मत होंगे जब इस दुआ को आप अपनी डेली रूटीन में सुबह के वक्त के लिए शामिल करेंगे। ऐ खुदा, मैं तुझे गवाह बनाता हूं और तू गवाही के लिए काफी है, और तेरे आसमान और तेरी जमीन को और इनमें जिन फरिश्तों और जिस जिस मखलूक को तूने बसाया है गवाह करता हूँ कि आज के दिन और इस घड़ी और रात में इस मकाम पर गवाह करता हूँ कि मैं इस बात का मोतरिफ हूँ। अब एतराफ, तौहीद का एतराफ, इस बात का मोतरिफ हूँ कि सिर्फ तू ही वो माबूद है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, इंसाफ का कायम करने वाला। अब अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की सिफात बयान हो रही है, इंसाफ का कायम करने वाला, हुक्म में अदल मलहूज रखने वाला, बंदों पर मेहरबानी, इक्तदार का मालिक, कायनात पर रहम करने वाला, और इस बात की भी शहादत देता हूँ, यानी तू इन सब सिफात का मालिक है, और इस बात की भी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे खास बंदे, रसूल और बरगुजरीदे कायनात, यानी तूने कायनात में से उनको मुंतखब किया है, और उन पर तूने रिसालत की जिम्मेदारियां आयद की तो उन्होंने उसे पहुंचाया, और अपनी उम्मत को पिंड नसीहत करने का हुक्म दिया तो उन्होंने नसीहत फरमाई हमारी तरफ से उन्हें, यानी हमारी तरफ से हमारे नबी के लिए बेहतरीन, वो बेहतरीन तोहफा अता कर जो तेरे हर उस इनाम से भरा हुआ हो जो अपने बंदों में से किसी से तूने किसी एक को दिया हो, और हमारी तरफ से उन्हें वो जजा दे जो हर उस जजा से बेहतर और बरतर हो जो अंबिया में से किसी एक को तूने उसकी उनकी उम्मत की तरफ से अता फरमाई हो। लिहाजा तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा और शरीफ और नजीब औलाद पर रहमत नाजिल फरमा। यहाँ पर इस दुआ नंबर 6 का भी इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह इन दुआओं के मतालिब की तरफ तवज्जो करते हुए इस दुआया नशिस्त में आप सब शामिल हैं, खुदा आप सबकी हाजात को पूरा फरमाए और हमें उसलूब दुआ, दुआ मांगने का ढंग अल्लाह सिखा दे। और याद रखिएगा, दुआ के बारे में ताकीद है कि दुआ के साथ अमल जरूरी है। बाज दुआएं ऐसी होती हैं کہ اس کا نصف عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر عمل کیا جائے تو باقی نصف پورا ہوتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ ہم اس کی طرف متوجہ رہیں گے. دعائے سلامتی امام زمان کے ساتھ اختتام کریں گے. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.